नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधि चौदह मन्वंतरों में अभी तक छह मन्वंतर तो हो चुके हैं, सातवां मन्वंतर है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवस्वान भगवान की भार्या थी, पत्नी थी। तो उसके द्वारा वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। तो विवस्वान का पुत्र होने से वो वैवस्वत कहलाता है। भगवान की जो पत्नी सूर्या थी, भगवान सूर्य उसको कभी भी देखते तो आंख बंद कर लेते। सूर्य का प्रकाश किसको सहन है? तो जब वो सूर्य भगवान की दृष्टि पड़ते ही वो आंख बंद कर लेती थी, तो सूर्य भगवान ने क्रोध में आकर संज्ञा से निष्ठुर वचन कहे, ओ मूर्खे, तू मुझे देखकर सदा नेत्रों को संयमित कर लेती है, इसलिए तेरे से सब प्रजाओं का संयमन करने वाला यमराज पैदा होगा। तो सूर्य से यमराज हुए संज्ञा के यहां। अब ये सुनकर देवी वो भय से कांपने लग गई, कांपने से नेत्र चंचल हो गए। तो फिर भगवान सूर्य ने कहा कि तू हमारी धमक सुनकर के, हमारी डांट डपट को सुनकर के घबरा गई, तेरी दृष्टि चंचल हो गई, इसलिए तेरे से एक चंचल नहरों से युक्त नदी का जन्म होगा। एक नदी तेरे कन्या के रूप में जन्म लेगी। तो संज्ञा के एक नदी और हो गई, तो पुत्र का नाम हुआ यम और पुत्री का नाम हुआ यमुना। आज संसार में ये दोनों ही बड़े विख्यात हैं। सूर्य भगवान जब अपने तेज से संज्ञा को देखते तो उसको कष्ट तो होता, लेकिन वो ये भी सोचते कि इससे तो नाराज होते हैं, पर करूं क्या, बड़ा असह्य काम हो रहा है, क्या करूं, कहां जाऊं, कहां मुझे शांति मिले, मेरे स्वामी मुझ पर कुपित होते हैं। अब इनका इतना तेज है कि वो तेज मेरे आंखों के सामने, मेरी आंखें उसको सहन नहीं कर सकती। अनेक प्रकार से विचार करते करते वो ब्रह्मा की बेटी संज्ञा, उसने विचार किया पिता के घर चलो, क्योंकि पिता के घर से ही आई हूं। तो वो जाने के लिए तैयार हुई, पर विचार किया कि भाई जा तो रही हूं, सूर्य भगवान ने यदि ब्रह्मा जी को कुछ उपालंब दे दिया तो बेटी के कारण से बाप को उपालंब मिले, यह भी बेटी का धर्म नहीं है। एक तरफ मुझे बेटी का धर्म निभाना है, एक तरफ मुझे पत्नी का धर्म निभाना है। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने एक अपनी छाया थी, छाया, वो छाया सूर्य की पत्नी बना दी अपनी छाया को। देखो सूर्य यूं देखते ना, अब कोई किसी को भी सूर्य सूर्य के सामने होता है उसकी छाया तो पड़ती है, तो उसकी छाया पड़ी तो उस छाया को ही कह दिया कि देख मैं तो जा रही हूं मेरे पिता के घर, अब तू यहां रहना और मेरी संतानों का पालन करना। और सूर्य भगवान है, इनके प्रति बहुत उत्तम बर्ताव करना। यूं कहकर के वो तो चली गई। ये बात वहां उन्होंने त्वष्टा प्रजापति का दर्शन किया और बड़े आदर के साथ पुत्री का स्वागत किया। कई कुछ समय तक वहां रही, उसके बाद पिता ने समझाया कि बेटी विवाह हो जाने के बाद बेटी अपने घर में जन्म ली है, वह उस घर में रहती अच्छी नहीं लगती है, वहां तो आती जाती अच्छी लगती है, तुम्हारा कितनी अच्छी जगह विवाह हुआ है, तीनों लोगों के स्वामी हैं, भगवान सूर्य सबको प्रकाश करते हैं, तो तुमको यहां ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए, तुम स्वामी के घर जाओ और स्वामी की प्रसन्नता लो। मां बाप तो बेटी पर यूं ही खुश होते हैं, इसलिए मां बाप की प्रसन्नता की अपेक्षा ससुराल की प्रसन्नता श्रेष्ठ होती है, तुमको जाना चाहिए। पिता के यूं कहने पर वो संज्ञा बहुत अच्छा ऐसा कहकर आज्ञा ली और प्रणाम किया पिता को, वहां से चली गई। वे सूर्य के तेज से डरती बहुत थी और ताप का सामना करना नहीं चाहती थी। विचार किया क्या करूं मैं, पिता की जो बात है वो भी गलत नहीं है, शास्त्र सम्मत है, लेकिन मैं सूर्य के तेज के सामने रह ही नहीं सकती, क्या करूं। तब वो उत्तर कुरु नाम के देश में चली गई और वहां घोड़ी होकर के तपस्या करने लग गई। ये तो उसकी बात हुई। अब वो जो छाया संज्ञा थी, माने संज्ञा ने अपनी छाया को बना दिया, वो रख दिया, इस बात का ज्ञान सूर्य भगवान को नहीं हुआ। सूर्य भगवान ने देखा कि छाया, देखो प्रतिबिंब होता है वो तो वैसा ही होता है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब ही है, तो उससे उसके दो बेटा और एक श्रेष्ठ कन्या हुई सूर्य के और छाया से। अब छाया संज्ञा ने अपनी संतानों को जितना प्यार दिया उतना संज्ञा के पुत्र पुत्री को नहीं दिया। तो मनु तो इसके बर्ताव को सह लेते थे, किंतु यमराज जी से ये सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर उसे मारने के लिए लात उठाई, फिर क्षमा भाव का आश्रय लेकर उसके शरीर पर लात लगाई नहीं। मन में तो आया कि मां कहलाती है, पक्षपात करती है, फिर विचार आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तब छाया संज्ञा ने कुपित होकर यमराज को शाप दिया, मर्यादा का उल्लंघन करते हो, अपनी मां के ऊपर लात उठाते हो, जाओ आज से तुम्हारा पैर जो मेरे पर उठाया है वो अब तुम्हारे पास नहीं रहेगा, वो पृथ्वी पर जा गिरेगा, वो पृथ्वी पर जा गिरेगा। माता ने जो श्राप दिया उसको सुनकर यमराज जी भय से व्याकुल हो गए और अपने पिताजी के पास जाकर, सूर्य के पास जाकर प्रणाम किया, बोले पिताजी, तो बड़े आश्चर्य की बात है, बेटा चाहे कैसा भी हो, मां तो मां ही होती है, मां के अंदर वात्सल्य होता है। आज तक कभी भी किसी मां ने अपने पुत्र को इतना कठोर शाप नहीं दिया होगा। दुर्गुणी पुत्र अवश्य होते हैं, परंतु माता का दुर्भाव कभी नहीं होता। यमराज जी ने कहा, यमराज जी की बात सुनकर सूर्य ने देखा कि संज्ञा तो ऐसी नहीं थी, वो बिचारी डरी रहती, ये इतना बड़ा दुस्साहस छाया ने, ये कौन है? उससे पूछा, तू कौन है? कहा, मैं तो छाया संज्ञा हूं। छाया संज्ञा? हाँ, आपकी पत्नी जो संज्ञा थी, उसकी जो छाया पड़ी वो चली गई, वो छाया उनको रख दिया आपके पास, तो मैं वैसी की वैसी आपको दिखती हूं। तो संज्ञा कहां गई? तो वो बोली कि नाथ, मैं ही तो त्वष्टा प्रजापति की कन्या और आपकी पत्नी संज्ञा हूं। आपने मुझे ये संतान उत्पन्न किए हैं। सूर्य ने कई बार घुमा फिराकर पूछा तो कहा कि तुम संज्ञा तो नहीं हो, तुम्हारा व्यवहार तो कुछ और जैसा ही लग रहा है। सच्ची बात नहीं बताई छाया संज्ञा ने। तब सूर्यदेव उसको शाप देने के लिए तयदेक अंतिम बार पूछता हूं, बता दे तू कौन है, नहीं तो अब मैं तुझे शाप दूंगा। घबरा गई कि अनंत शक्ति से संपन्न सूर्य की अग्नि, वो अग्नि यदि मेरे पर गिर गई तो मैं तो जल करके राख हो जाऊंगी। इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि मुझे क्षमा करें, मैं संज्ञा नहीं हूं, मैं छाया संज्ञा हूं, संज्ञा की छाया ही हूं। अच्छा, तो वो विश्वकर्मा के यहां गई है कि? हां, असली बात का पता लगने पर भगवान सूर्य विश्वकर्मा के घर गए। विश्वकर्मा ने अपने घर में आए हुए जवाई राज त्रिलोक पूजित सूर्य देव का बड़ा भक्ति भाव के साथ आदर किया और फिर संज्ञा का पता पूछा सूर्य भगवान ने। तो त्वष्टा प्रजापति विश्वकर्मा ने कहा, भगवान, वह मेरे यहां आई तो अवश्य थी, किंतु मैंने उसे पुनः आपके पास भेज दिया। मैंने कहा, बेटा, बेटी तो विवाहित हो जाने के बाद अपने ससुराल के घर को घर समझे, वही बेटी मां बाप को अच्छी लगती है, और जो ससुराल से नाराज होकर लड़ झगड़ कर मां बाप के पास रहती है वो बेटी ना समझ कहलाती है। मैंने तो कब कहीं भेज दिया। तब सूर्य भगवान ने देखा कि ओहो, मेरे प्रकाश में भी आज मुझे पूछना पड़ता है। सूर्य भगवान ने समाधि लगाई और अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाया। फिर अच्छा, वो संज्ञा तो घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु देश में तपस्या कर रही है। उसकी तपस्या का उद्देश्य यही है कि मेरे पतिदेव की आकृति सौम्य हो जाए और शुभ हो जाए। सूर्य को उसकी तपस्या का उद्देश्य का ज्ञान हो गया। तब उन्होंने विश्वकर्मा से कहा, आप मेरे तेज को छांट दीजिए, थोड़ा तेज है इसको छांट दो, कभी तेज हो और कभी धीरे धीरे मंद मंद हो। कभी तो मेरा प्रकाश लोगों को बहुत सुहावे, ठंड पड़ती है तो सारे दिन धूप में बैठते हैं, शरीर काला तो पड़ जाता है, भले ही पड़ो धूप बहुत अच्छी लगती है। 12-1 बजे की धूप तो उसके लिए तो ललायत रहते हैं। तो मेरे तेज को छांट दीजिए, तो उन्होंने एक वर्ष नामक का चक्र बनाया और उसने तेज को छांट दिया, कभी ज्यादा कभी कम, और फिर बदल आ जाए तो और कम, ऐसे। उस समय देवताओं ने बड़ी प्रशंसा की, वाह सूर्य भगवान, आपका जो इस प्रकार से छटा हुआ तेज होता है वो सब प्राणियों को भा जाएगा, नहीं तो एक ही तेज में रहने पर तो मुश्किल हो जाएगी। तदनंतर उन्होंने सूर्य भगवान की स्तुति करी, उस स्तुति में देवता शामिल हुए और बड़े बड़े ऋषि मुनि सब शामिल हो गए। नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः, यजुस्वरूप रूपाय सामनाम धामवते नमः। हे सूर्यदेव, आप ऋग्वेद के स्वरूप हो, सामवेद के स्वरूप हो, यजुर्वेद के स्वरूप हो, और आप सभी सामो के अधिष्ठान हो, अखिल जगत व्यापी स्वरूपाय, आपका स्वरूप संपूर्ण संसार में फैला हुआ है, शुद्ध ज्योति स्वरूपाय, और आपका शुद्ध प्रकाश फैलाना ही आपका काम है। आप अत्यंत विशुद्ध है, स्वयं शुद्ध है, और आपके प्रकाश में वस्तु रख दी जाती तो वो शुद्ध हो जाती है। हे भास्कर, हे हम आपको प्रणाम करते हैं, आप ही दिन को बनाने वाले हो और सर्वरी हेतु आप ही रात्रि को बनाने वाले हो, छिप जाते हो तो रात्रि बन जाती है, यह भी आवश्यक है, क्योंकि हरदम ये गर्मी रहने से प्राणी झुलस जाएंगे, रात्रि में ठंडक भी हो जाती है। आप इस जगत के अंदर बराबर ब्रह्मांड में घूमते रहते हो और प्रत्येक प्राणी के कर्म को देखते रहते हो, आप इसी सारा संसार पैदा हुआ है। आप यदि नहीं होते तो यज्ञ दान होम ये कौन करता, इसलिए आपके प्रकाश में यज्ञ होता है, दान होता है, विद्या अध्ययन होता है, समस्त शुभ कर्म आपके साक्षी में होते हैं। और ऋग्वेद के आप ही होता हो, यजुर्वेद और सामवेद श्रुतियां आपकी अंगों से प्रकट हुई है, मूर्त अमूर्त स्थूल स्वरूप स्थूल सूक्ष्म जितना भी स्वरूप है वो सब आप ही का है, ऐसे भगवान की बड़ी स्तुति गाई। तो भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा के द्वारा अपने तेज को कुछ कम करवाया। यजुर्वेद में तेज से द्युलोक की रचना हुई, सामवेद में तेज से स्वर्गलोक की रचना हुई, विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज के 16 भागों में 15 भाग छांट दिए और उनके द्वारा भगवान शंकर का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र और वसुगणों के भयंकर शंकु, अग्नि की शक्ति, कुबेर की शिबिका तथा अन्यान्य देवता यक्ष और विद्याधरों के लिए भयंकर अस्त्र शस्त्र बना दिए अपने तेज से। सूर्य भगवान तब से अपने तेज के 16वें भाग को धारण करते हैं। तेज कम होने के बाद वे अश्व का रूप धारण करके उत्तर कुरु नामक देश में गए और वहां उन्होंने घोड़ी के रूप में संज्ञा को देखा। उन्हें आते देख संज्ञा ने देखा कि ये कौन है, उनको लगा हो नो ये कोई कौतुकी है, ये जान करके कोई घोड़ा बन करके आया है, ये पराये पुरुष की उनको शंका हुई, इसलिए वे अपने पृष्ठ भाग की रक्षा करती हुई सामने की ओर से उनके सम्मुख गई और जाकर के उनको देखाई। तो जब उनको देखा ये दोनों नाक और दोनों आंख ऐसे दोनों नाक से वायु निकली दोनों आंख से देखा तो अश्वरूप धारिणी संज्ञा के मुख से दो पुत्र प्रकट हुए, एक तो नासत्य और एक दस्र, ये दो जो है पुत्र हुए। इसके अतिरिक्त सूर्य भगवान की दृष्टि से रेवंत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो ढाल तलवार कवच धारण किए हुए था, बाण तरकस आदि से सुसज्जित था और वो भी घोड़े पर प्रकट हुआ, वहां प्रकट हो गया। तो उस समय सूर्य ने संज्ञा को अपने अनुपम स्वरूप का दर्शन कराया, तब संज्ञा को बड़ी प्रसन्नता हुई। सूर्य अपने रूप में और संज्ञा भी अपने रूप में आ गई और सूर्य देव ने बता भी दिया कि अब मेरा तेज पहले जैसा नहीं होगा, अब मेरा तेज छट गया है। तब सूर्य देव अपनी प्रीतिमती पत्नी संज्ञा को लेकर अपने निवास स्थान पर चले गए। तो उनकी जो पहली संतान थी, पहला पुत्र, वो वैवस्वत नाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा पुत्र यमराज था, ये माता के शाप से ग्रस्त थे। पिता ने इनके शाप का अंत करते हुए कहा कि देखो इसका पैर है वो इसकी मां के शाप से कीड़ों के साथ गिर पड़ेगा, उसके बाद इसका पैर ठीक हो जाएगा। और यम है धर्म पर दृष्टि रखेगा, मित्र तथा शत्रु के प्रति समान भाव रखेगा, तो यमराज की आराधना होगी। तब यमराज ने प्रणाम किया। तब से सूर्य ने प्रजाओं के धर्म अधर्म का फल देने के लिए यमराज को एक ऊंचे पद के ऊपर प्रतिष्ठित कर दिया। यमुना कलिंद पर्वत के बीच से बहने वाली नदी हो गई और दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वेद्य नियुक्त हुए। वो दोनों नाग से पैदा हुए ना, सांस लिया था वो अश्विनी कुमार, और रेवंत को भी गुहकों का स्वामी बनाया। अब छाया संज्ञा के पुत्रों की जहां नियुक्ति हुई उनकी बात सुनो। छाया संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र का वर्ण वैवस्वत मनु के ही समान था, अतः वह सावर्णिक हो गए। वे आठवें मनु हो जाएंगे, अभी तो सातवां चल रहा है, वो आठवें हो जाएंगे। उस समय राजा बलि इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित रहेंगे। छाया के दूसरे पुत्र शनिश्चर को पिता ने ग्रहों के मध्य में नियुक्त किया। ये शनिश्चर है, इस किसी न किसी जब विशेष ग्रह को देखता है तब आपत्ति आती है। तीसरी संतान तप्ती नाम की कन्या थी, उसने राजा संवरण को अपना स्वामी बनाया और उनसे कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। ये कुरु एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए जिससे ये कौरव वंश चला। वैवस्वत मनवंतर में आठ देवगण होते हैं और साध्य वसुगण विश्वे देवगण ये भी होते हैं। ये सब मारी सृष्टि है। मारीच नंदन कश्यप के संतान होने के कारण से इनको मारीच कहते हैं। वर्तमान त्रिलोकी में भूलोक है, ये पृथ्वीलोक है। अंतरिक्ष को द्यूलोक कहते हैं या भूवरलोक कहते हैं और दिव्य लोक को स्वर्गलोक कहते हैं। अत्रि वशिष्ठ गौतम भरद्वाज विश्वामित्र जमदग्नि ये मन्वंतर के सप्तऋषि हैं। इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, सरियाती, नरिश्यंत, ये सब मनु के पुत्र हैं। ये सब मैंने तुमको वैवस्वत मनुअंतर का वर्णन सुना दिया। इसका श्रवण और पाठ करने से सब पापों की मुक्ति हो जाती है। एक प्रकरण पूरा हो गया। कौष्टकी ने पूछा कि महाराज, जो आठवें मनु होंगे, सावर्णिक मनु, उनके विषय में आगे होने वाली कथा को तो आप जानते ही हो, आप हमको उनके विषय में भी सुनाओ। तब वे आगे उनके विषय में सुनाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।